हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका अपनी जगह से कुछ कदम पीछे होते हुए बोली, करण करण तुम ये क्या कर रहे हो? करण ने बहुत ही आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अपनी वाइफ को बैग हक कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी हैप्पी होली बोलने आया था, और अभी तो मेरी भी होली हैप्पी हो गई तुमसे मिलकर और ये जानकर कि तुम अभी भी इतना सोचती हो मेरे बारे में, और क्या चाहिए मुझे? करण ये बात बोल रहा है तो शिविका को उसकी गर्म सांसें अपने गर्दन और कानों पर महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह से वो हल्का से गर्दन को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हिली, और वो कुछ तो बोलना चाह रही थी लेकिन उसके मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। करण की ऐसी बातें सुनकर वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुकी थी। शिविका बहुत ही ज़्यादा अटकते हुए बोली, क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ भी नहीं सोचती तुम्हारे बारे में, और तुम छोड़ो छोड़ो मुझे, दूर दूर हटो मुझे करण, क्योंकि पहले ही तुम मुझसे बहुत दूर हो चुके हो। मैं तो ये दूरियां मिटाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो। इतना बोलते हुए करण ने एकदम हौले से उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे, और उसके होठों का टच अपनी गर्दन पर महसूस होते ही शिविका की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं, लेकिन उसने अपने हाथों की एकदम कसकर मुट्ठी बांध ली। और वो करण को बस खुद से दूर धकेल देना चाहती है, उसका दिमाग तो यही कह रहा है, लेकिन उसका दिल और उसकी बॉडी, वो दोनों ही करण को खुद से दूर नहीं करना चाहते और ना ही उसे दूर होने देना चाहते हैं। बस इसी कश्मकश के बीच फंसी हुई शिविका अभी भी उसकी बाहों में चुपचाप खड़ी हुई थी। शिविका ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया तो करण की भी हिम्मत बढ़ी और उसकी गर्दन पर करण ने दोबारा से चूमा और फिर बोला, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, बस इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहना तुम। करण की ये बात सुनते ही शिविका को गुस्सा आ गया, वो एक झटके से पीछे मुड़ी और उसने करण को पीछे धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। उसके धक्के में इतना जोर तो नहीं था कि करण कुछ ज़्यादा दूर हो पाता, लेकिन फिर भी उसके धक्के का मतलब समझकर उसकी रिस्पेक्ट में करण कुछ कदम दूर हो गया, और उसने शिविका के चेहरे की तरफ देखा तो वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी, इसीलिए करण कुछ नहीं बोला। उसे पता था अगर अभी वो कुछ भी बोलेगा तो बस शिविका का गुस्सा और बढ़ेगा। शिविका ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, कहाँ साथ हैं हम, और इस तरह छिपकर यहाँ पर आने को तुम साथ देना कहते हो? अपनी हद में रहो मिस्टर, हम साथ थे लेकिन तुमने मुझे खुद से दूर किया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और अब क्यों बार बार कोशिश करते हो मेरे नज़दीक आने की? क्यों फ़ायदा उठाते हो मेरी कमज़ोरी का, मेरी फीलिंग्स का, मेरे इमोशंस का, जो सब तुमसे जुड़ चुके हैं? करण ने उसे अपनी पूरी बात बोलने दिया, लेकिन इतना बोलते बोलते ना चाहते हुए भी शिविता की आंखों में आंसू आ गया, और करण उसे इस तरह से नहीं देख पाया, इसलिए वो तुरंत ही आगे आया और शिविका के गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। वो शिविका को खींचकर अपने गले लगाते हुए करण के मुंह से एकदम ही ये बात निकल गई, जबकि वो उसे ये बात बताना नहीं चाहता था, इसीलिए ही दांतों से अपनी जीभ काटते हुए करण एकदम ही बीच में चुप हो गया। उसके गले लगी हुई शिविका भी ये बात सुनकर सनक गई और तुरंत ही पीछे होकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या मुझे प्रोटेक्ट करने? सीरियसली करण, और कोई छूट नहीं मिला तुम्हें बोलने को? मुझे भला यहाँ पर किसी से खतरा हो सकता है जो यहाँ पर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो? मैं पिछले एक साल से यहाँ पर रह रही हूँ, तब तो नहीं आए थे मुझे प्रोटेक्ट करने कभी। शिविका की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही मायूसी से अपना सिर नीचे झुकाते हुए करण ने अपनी सफाई में बोला, सॉरी, बट मैं कुछ भी कहूँगा तो तुम्हें यही लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन तुम खुद ही सोचो, बिना बुलाए मैं ऐसे यहाँ पर क्यों आऊँगा तुम्हारे लिए? शिविका, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और काव्या के लिए। वैसे वो कहाँ पर है? शिविका ने गुस्से में उसे उंगली दिखाकर चुप कराते हुए कहा, वो कहीं पर भी हो तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे पहले भी कहा, कोई नहीं लगते हो तुम काव्या के, और ना ही तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, हम दोनों जैसे भी हैं ठीक हैं, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से मिस्टर करण मल्होत्रा, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है आज फेस्टिवल वाले दिन। इतना बोलकर शिविका ने अपनी नज़रें फेर ली, क्योंकि वो करण की आंखों में नहीं देखना चाहती जहाँ पर उसे बहुत ही सच्चाई और मासूमियत नज़र आती है, क्योंकि वो करण की हर बात को बस छुटलाना चाहती थी। शिविका ने इस तरह से उसका पूरा नाम लेते हुए उससे बात की जैसे कि वो सच में उसके लिए अजनबी हो। ये बात सुनकर करण को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और ना ही कोई शिकायत की, क्योंकि उसे पता इन सब में शिविका की नहीं बल्कि उसकी गलती है, क्योंकि चाहकर भी वो शिविका को आज तक पूरा सच नहीं बता पाया है। जबकि कल जब उसे पता चला कि यहाँ पर पार्टी में भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर शिविका पर फिर से अटैक हो सकता है, तो वो खुद को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिविका को कुछ भी हो। उसे अपने सोर्सेज से ये खबर मिली थी, इसीलिए वो इतना रिस्क लेकर यहाँ पर आया था। उसने शिविका की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपना मोबाइल फ़ोन देखो, कितनी बार फ़ोन कॉल और कितने मैसेज किए हैं मैंने, लेकिन तुमने एक भी मैसेज ओपन नहीं किया और ना ही मेरी कॉल रिसीव की। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, अगर तुम एक बार कॉल रिसीव कर लेती तो मैं तुम्हें अलर्ट कर देता, फिर मुझे शायद यहाँ पर आने की ज़रूरत ना पड़ती और ना ही तुम्हें मेरी शक्ल देखने को मिलती। इतना बोलकर करण ने अपनी जेब से निकालकर अपना मास्क दोबारा से लगा लिया और खुद ही वहां आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगा। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी शिविका तुरंत आकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो दरवाजे और करण के बीच में अपने हाथ फैलाकर खड़ी हुई और करण की तरफ देखते हुए बोली, रुको, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। उसके इस तरह से रोकने पर करण ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, ऐसे नहीं तो फिर कैसे जाऊं? और अभी तुमने ही तो मुझे यहां से चले जाने को कहा है, और अब जा रही हो तो रोक रही हो, बहुत ही अजीब हो तुम। करण ने ये बात तो बहुत ही ज्यादा बेरुखी से बोली, क्योंकि अभी अपने मन की कोई भी फीलिंग और इमोशन वो शिविका के सामने नहीं दिखाना चाहता, जिसकी वो कद्र भी नहीं कर सकती।